नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कल शाम संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि पश्चिम एशिया संकट पर सभी दलों के सदस्यों के सभी प्रश्नों और चिंताओं का सरकार ने समाधान किया है।
मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट महसूस कर रहा हूं कि सारे विपक्ष ने जो जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है।
ये बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में पश्चिम एशिया स्थिति पर दिए गए संबोधन के बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने ईरान इजराइल अमरीका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन आपूर्ति श्रृंखला उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने के लिए 7 सशक्त समूहों का गठन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय योगदान को मंजूरी दे दी है। इससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि और पेरिस समझौते के अंतर्गत देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिला है। भारत ने 2005 के स्तर से 2035 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 47% तक कम करने का संकल्प लिया है। फरवरी 2026 तक देश के 52.57% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली है। इससे निर्धारित समय सीमा से 5 साल पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। इस पर 28,840 करोड़ रूपये की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों पर 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आवर्जन वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 के बाद 5 वर्ष के लिए भी स्वीकृति दी। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में सड़क दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक निजी ट्रेवल बस की टिपर ट्रक से टक्कर के बाद आग लग गई। ये भीषण हादसा रायवरम के नजदीक पत्थर की खदान के पास हुआ। इस घटना में 20 घायल यात्रियों को उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल का शोधन करने की क्षमता है। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में खरीदारी करने से बचने का आग्रह किया गया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पीएनजी विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा कि जांच के बाद 2,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। प्रमुख नामों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्याकांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न लें। प्राधिकरण ने कहा कि वो देश भर में इस पर निगरानी रख रहा है और इसका उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। माले में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप बी के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।